याद आए हमारी तो मत रोना, हम छोड़ चले गाजीपुर की महफिल को। याद आए हमारी तो मत रोना, कुछ गिले शिकवे थे, कुछ गिले शिकवे थे वे दूर हुए, मांगे हमारी पूरी हुई, किसानों की जीत हुई। आओ मिलने गले, आओ मिलने गले, फिर मिले ना मिले, आ अब लौट चले, आ अब लौट चले।
वाह, नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली की सीमाओं से किसान चले गए, लेकिन इस आंदोलन की यादों के साथ वे जीवन भर चलते रहेंगे। इस एक साल में उनके बीच ऐसे गहरे रिश्ते बन गए कि एक दूसरे से बिछड़ना जीत के जश्न को गमगीन कर गया। गांव में लौटे किसान आंदोलन की यादों में डूबे हैं। इन किसानों के मोबाइल फोन में अरबों तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, मालूम नहीं इनमें दर्ज असंख्य कहानियों का क्या होगा। सब अपनी अपनी यादों को लेकर लौटे हैं। मीडिया और संपूर्ण गोदी मीडिया में इस आंदोलन को लेकर कुछ कहानियां बार बार दोहराई जाती रही, जिनसे लगता है कि किसान आंदोलन देखा और जाना जा चुका है। इसके बाद भी बेशुमार कहानियां ऐसी हैं जो अनकही और अनजानी हैं।
ये मटका, इसमें पानी, गर्मी में ठंडा पानी रखते थे इसमें,
हाँ,
और इसी में बर्फ डाल लेते थे, उसी से पानी से काम चलाते थे हम लोग जब लू चलती थी।
तो अब इसको घर लेकर जा रहे हैं, देखना घर लेकर जा रहे हैं।
हाँ जी, इसे घर लेके जा रहे हैं।
काहे के लिए घर लेकर?
आने वाली पीढ़ियों को दिखाएंगे कि इस तरह हम लोगों ने आंदोलन लड़ा था।
जो इसमें शामिल रहे हैं वो अब इस आंदोलन की स्मृतियों से दूर नहीं होना चाहते। अगर पूरा साल मुश्किलों भरा था तो कानून वापसी की घोषणा से आंदोलन की वापसी के दिन भी कम मुश्किल भरे नहीं थे। कुछ लोग एक दूसरे से बिछड़ने की पीड़ा एक दूसरे से कह गए तो कुछ अपने साथ ले गए। इन तमाम किस्सों से हम और आप अनजान रह गए। जैसे हम इस दुकानदार के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिसने गाजीपुर बॉर्डर पर कुर्ते की दुकान लगाई। इस दुकान में किसान आंदोलन के बैज बिक रहे थे और बैडमिंटन का रैकेट भी। किसी ने बताया गाजीपुर बॉर्डर पर कबड्डी भी खेली जाती रही जिसके लिए मैदान बनाया गया था। यह मेडिकल कैंप है जो अब खाली हो चुका है। यहाँ डॉक्टरों की टीम सेवाएं दिया करती थी और जब वे नहीं होते थे तो MBBS की डिग्री के बिना भी एक डॉक्टर सर्दी बुखार की दवा दे दिया करते थे। इस ई रिक्शे को आता देख मुझे लगा कि टेंट हाउस वाला बोरिया बिस्तर उठाकर जा रहा है, लेकिन इन्होंने बताया कि होम्योपैथी की क्लिनिक चल रही थी, अब समेट कर जा रहे हैं। चाय लंगर का यह बोर्ड देखकर अंदर गया तो सबसे पहले बहुत से गमले दिखाई दिए जिन्हें करीने से सजाकर रखा गया था। जथेदार कश्मीर सिंह भूरी वाले के इस लंगर में चाय, पकौड़े, बर्फियां और रसगुल्ले मिला करते थे। बाबा ने पूरे आंदोलन के दौरान लोगों को चाय पिलाई और मिठाई खिलाई। इनके बिना किसान आंदोलन की कहानी बन नहीं सकती। किसान आंदोलन एक नगर बसाने का भी आंदोलन है। शहरों ने किसान आंदोलन को पसंद नहीं किया, लेकिन किसानों ने अपने आंदोलन में शहर बसा लिया। पानी गर्म करने से लेकर सार्वजनिक स्नान घर और शौचालय बनाने की व्यवस्था की गई, उस पर ही अलग से लिखा जा सकता है। मेरी मुलाकात एक नौजवान से हुई जिसका नाम तेरा मेरा हो गया है। बुंदेलखंड से आए इस नौजवान का नाम महेंद्र है। टिकैत के रोने की खबर सुनकर गाजीपुर आ गया। टिकैत ने कहा, तुम्हें महेंद्र नाम से नहीं बुला सकते क्योंकि ये मेरे पिताजी का नाम है। इस नौजवान के गांव का नाम तेरा है तो सबने तेरा बुलाना शुरू किया और फिर दुलार में बिगड़ते बिगड़ते उसका नाम तेरा मेरा हो गया। महेंद्र को किसान आंदोलन ने एक नई पहचान दी है, नया नाम भी तेरा मेरा। शुरू में लगा कि गोदी मीडिया के रहते इस आंदोलन का दम घुट जाएगा, लेकिन बहुत कम समय में इस आंदोलन ने अभिव्यक्ति के कई सारे अवसर पैदा कर दिए। सरकार आपदा में अवसर पैदा कर रही थी और किसान अभिव्यक्ति के अवसर पैदा कर रहे थे। इतने सारे अवसर पैदा कर दिए कि कई लोग इस आंदोलन को जैसे तैसे कवर करने लगे, रिकॉर्ड करने लगे। जिस इंटरनेट से आंदोलन के खिलाफ जहर फैल रहा था, उसी इंटरनेट से आंदोलन भी फैलने लगा। हर किसान अपने आप में मीडिया बन गया और किसानों ने हजारों करोड़ों के विज्ञापनों वाले गोदी मीडिया को हरा दिया। बजाइए ताली। किसानों ने अपना एक दर्शक वर्ग का बाजार भी खड़ा कर दिया है, जिसके दम पर कितने यूट्यूबर खड़े हो गए, लाखों करोड़ों व्यूज मिले। ट्विटर से हमला हुआ तो किसान भाई ट्विटर पर पहुंच गए और आंदोलन का अकाउंट खोल प्रोपेगेंडा से लड़ने लगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर भी अकाउंट बनाया है इन्होंने। उनकी लड़ाई का दायरा हर लड़ाई के साथ बड़ा होता चला गया।
लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई।
गाजीपुर बॉर्डर की कहानी शेरू कुत्ते के बिना पूरी नहीं हो सकती। जिस तरह से आंदोलन शुरू में कमजोर था, शेरू भी बहुत कमजोर था। आंदोलन मजबूत होता गया और शेरू भी मजबूत होता गया। सबकी चिंता थी कि गाजीपुर का शेरू अब आंदोलन के बिना कैसे रहेगा।
जाएगा मेरे साथ में, जाएगा, जाएगा।
शेरू जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और किसानों को शेरू की याद आती रहेगी। दुराला गांव के रहने वाले रविंदर दौरालिया शेरू को अपने साथ ले गए हैं। शेरू भी किसान बन गया था और किसान शेरू की तरफ बहादुर। एक जिंदा दिल आंदोलन अनगिनत जीवन रेखाओं से बना होता है। अखबार बांटने वाला आकाश नजर रखने लगा कि अखबारों में आंदोलन के बारे में क्या छप रहा है। वह हर दिन 25 से 30 अखबार मुफ्त में बांटा करता था अपनी जेब से, कि किसानों को पता रहे कि अखबार क्या छाप रहे हैं।
ये क्यों बांटते थे भाई आकाश?
सेवा करते थे, मतलब लोगों किसानों को दिखाना था कि तुम्हारे बारे में मीडिया क्या कर रहा है, प्रिंट मीडिया में क्या चल रहा है।
इस लंबी लड़ाई के लिए किसानों ने कई प्रतीकों को पहली बार अपनाया। शुरू में छवि बनाई गई कि वे तोड़फोड़ करेंगे, कानून नहीं मानेंगे। किसानों ने संविधान को अपना अभिभावक बना लिया और यह धारणा पहले ही दिन तोड़ दी कि उनका आंदोलन कानून तोड़कर कानून का विरोध करने आया है। कानून पर चलते हुए कानून का विरोध कर दिखा दिया। हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूं मैं, भारत का संविधान हूं। यहां संविधान एक व्यक्ति के रूप में किसानों से संवाद कर रहा है, आश्वासन दे रहा है कि मैं समाधान हूं। अब जब यह मंच उजड़ चुका है, आप संविधान की किताब के इस कटआउट को फिर से देखिए। हजारों निष्ठाओं में बटे किसानों ने संविधान में अपनी एकता देखी और संविधान को अपना इष्ट बना लिया। इसमें संविधान मैं की शक्ल में किसानों से बात कर रहा है। शशि भूषण और अशोक टक्सालिया को हम और आप नहीं जानते हैं, मगर इन दो अनजान लोगों ने संविधान को कितना जैविक बना दिया है। जय जवान और जय किसान के नारे को एक चेहरा दिया है, उसे बदलकर मैं जवान मैं किसान आंदोलन कर दिया गया है। जो नारा आज तक निराकार था, उसमें मैं जोड़कर जान डाल दी गई है। किसान आंदोलन बहुत सी चीजें पहली बार कर रहा था, तो बहुत सी चीजें पहले के आंदोलनों से भी ले रहा था। शाहीन बाग के आंदोलन से औरतों और बच्चों को वहां आने का हौसला मिला, तो दलित आंदोलन और उसके बाद शाहीन बाग के नायक संविधान की किताब को अपना रहनुमा बना लिया। शाहीन बाग भी कई मायनों में सफल आंदोलन रहा। 2 साल से नागरिकता कानून के नियम नहीं बने हैं। किसान आंदोलन में भी एक शाहीन बाग था और यही शाहीन बाग की सफलता है। संविधान के कारण आंदोलन का आंचल इतना बड़ा हो गया कि नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे आंदोलन में आए। महिलाओं ने स्टेज संभाले तो मर्दों ने रोटियां बनाई। इस आंदोलन ने हर हिंसा की, उसी वक्त निंदा भी की। इस आंदोलन को कवर करने वालों की अपनी अपनी कहानियां हैं। फोटो पत्रकार सर्वेश 66 साल की उम्र में हर दिन आंदोलन के हर मोर्चे को कवर करने जाती थी। फ्रीलांसर सर्वेश ने बताया कि उन्होंने इस आंदोलन को लेकर 1,00,000 के करीब फोटो खींचे हैं। 100-150 GB से अधिक का डेटा हो गया है। उन्हें उम्मीद थी कि अखबार किसान आंदोलन की तस्वीरें छापेंगे, मगर जो छाप रहे थे उनने भी मना कर दिया। 10-15 तस्वीरें ही छपी, वो भी छोटे छोटे अखबारों में। सर्वेश ने सोचा उनके सामने से एक इतिहास गुजर रहा है, क्यों न इसे दर्ज किया जाए। वो इन तस्वीरों को रिकॉर्ड कर अपनी तरफ से फ्री सेवा देने लगी, मगर अफसोस मीडिया ने उनकी ये फ्री सेवा भी नहीं ली।
शुरू शुरू में तो मैं यहाँ पे रोज जाया करती थी और फिर पेट्रोल महंगा होने के कारण मैंने कम कर दिया था। और दूसरा एक बात है, किसान आंदोलन की तो बहुत सारी चीजें आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। किसान आंदोलन गांव गांव मैंने कई सारे गांव गांव में फैला हुआ था। मैंने कई सारे इनकी महापंचायत कवर की है, और महापंचायत में जब लोगों से बात करती थी तो गांव गांव तक ये पहुंचा है। मैं जब इनके महापंचायतों में गई हूँ, लोगों से जब बातचीत की है, मीडिया में बिल्कुल नहीं आया है। मीडिया में इससे कहीं ज्यादा अच्छा होना चाहिए था, आना चाहिए था, वो नहीं आया है। हमारी तो इतनी बढ़िया लोकतांत्रिक सरकार है और किसी ना मेरी तो खैर फोटो खरीदेगी भी नहीं। मतलब बहुत सारी स्टोरीज आनी चाहिए थी किसानों की, लेकिन नहीं आई।
किसान आंदोलन की 1,00,000 तस्वीरों को छाटना आसान नहीं, फिर भी सर्वेश इंडियन विमेन प्रेस कोर गई, क्योंकि वहां फ्री वाईफाई है दिल्ली में, और वहां से आपके लिए उन्होंने कुछ तस्वीरें भेजी हैं। उन तस्वीरों के जरिए आंदोलन को महसूस कीजिए। सर्वेश से मुलाकात गाजीपुर बॉर्डर पर हो गई। सबके जाने के बाद मैं वहां गया था। बची खुची निशानियों से आंदोलन की बुलंदी की तस्वीरों के बारे में अनुमान लगा रहा था कि 1 साल पहले यहां के दिन रात कैसे बीते होंगे। कुछ किसान साथियों ने मुझे यह कमरा दिखाया। इस कमरे में भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत की जोत रखी हुई थी। अंदाजा मिलता है कि किसानों ने साल भर तक आशा और निराशा के बीच किन किन चीजों के सहारे खुद को संभाला होगा। यहाँ तो बहुत सारे पंखे रखे हैं। गर्मी के दिनों में किसानों ने बहुत सारे कूलर पंखे आंदोलन को दान में दे दिए, और यहीं पर एक जिम भी बन गया। किसान सरकार से ही नहीं, अपने आप से भी लड़ रहे थे। अपनी निराशाओं से लड़ना सबसे बड़ी लड़ाई होती है। ट्रॉली को लेकर किसान हमेशा से ही प्रयोग करते रहे हैं, मगर आंदोलन ने ट्रॉली की कल्पना में नए नए पहलू जोड़े। इस ट्रॉली में हवाई जहाज का पहिया लगाया गया है ताकि यह इसके ऊपर बने 2 कमरे का भार उठा सके। किसी ट्रॉली में 1 बड़ा कमरा बना था तो किसी में 2-2 कमरे बने। दान में मिले गद्दों से बिछौना बना तो ट्रॉली की छत को भी गर्मी से बचाने के उपाय किए गए। बाहर ट्रॉलियों पर नारे लिखे गए, तस्वीरें लगा दी गई शहीदों की। ट्रॉलियों को लेकर इतने प्रयोग किए गए कि ट्रॉली आर्किटेक्चर के नाम से आर्किटेक्चर के स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए। नए नए ढांचे बता रहे थे कि आंदोलन में केवल किसान नहीं थे बल्कि उनके गांवों से निकले मजदूर और कारीगर भी थे। उन अनाम कारीगरों ने किसान आंदोलन को स्थायी रूप देने के लिए न जाने कितने घर बना दिए। आंदोलन में लोग ठहरने लगे और आंदोलन ठहरने लगा। 40 साल पुराने ट्रैक्टर से लगा यह जालीदार कमरा देखने लायक है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब भीतर प्रवेश कर रहा था, किसी ने बताया कि इस ट्रॉली को बुलंदशहर के कारीगरों ने तैयार किया था। उनकी कारीगरी देखिए। किसान आंदोलन की बैठकें पारदर्शी रहें, इसलिए जालीदार बनाया गया ताकि बाहर से दिखता रहे। इसमें एक कमरा भी है सोने के लिए, जिसके लिए पर्दे लगाए गए हैं और एयर कंडीशन भी है। आप चाहें तो इसे वायरल करा सकते हैं। इस ट्रॉली के भीतर लिखे स्लोगनों को भी पढ़ लीजिए। पता चलता है कि किसान आंदोलन किसानों के बीच से डर और भय निकालने का भी आंदोलन चला रहा था। फिराक गोरखपुरी का शेर लिखा है, ये माना जिंदगी है चार दिनों की, बहुत होते हैं यारों चार दिन भी। महेंद्र सिंह टिकैत का एक कथन यहां है, ओ भोले किसान तू बोलना सीख ले और दुश्मनों को पहचान। हार और डर को लेकर एपीजे अब्दुल कलाम की बातें लिखी हैं। महात्मा गांधी का एक कथन लिखा है, डर शरीर का रोग नहीं है या आत्मा का रास्ता है। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू का भी कथन है, महान कार्य और छोटी सोच के लोग साथ साथ नहीं चल सकते। क्या आपको पता था कि किसान आंदोलन में नेहरू भी थे? नहीं ना। जालीदार ट्रॉली के बाहर ज्योतिबा फूले से लेकर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें भी लगाई गई थी। ऐसा लगता है जालीदार ट्रॉली का यह कमरा किसानों के लिए डर मुक्ति का अभ्यास केंद्र बन गया था। पवित्र कौर प्रीत 20-21 साल की हैं। उनके पिता टिकरी बॉर्डर की आयोजन समिति के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। पवित्र कौर का बचपन बाकी बच्चों से अलग है। पिता गुरनाम सिंह विक्की तरह तरह के आंदोलनों में हिस्सा लेते रहते हैं और कई बार जेलों में रहते हैं। इस आंदोलन में साल भर यहां रहे और उनकी बेटी पवित्र भी यहां रही। जीत की खुशी के वक्त पवित्र किसानों को ट्रॉफियां बांट रही थी। बस इस वीडियो को सुन लीजिए, लंबे समय तक आप याद रखेंगे।
मेरा नाम पवित्र कौर प्रीत है और मैं मानसा जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम गुरनाम सिंह भिक्की है जो कि पंजाब किसान यूनियन के सूबा सकत्तर हैं और टिकरी बॉर्डर कमेटी के मुख्य आगू हैं। मैं हमेशा से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरे मार्क्स भी हमेशा अच्छे थे। मैं इंटेलिजेंट थी स्टडी में भी। ऐसे में बास्केटबॉल की नेशनल चैंपियनशिप में भी रही हूँ और मैं स्टडीज में भी अच्छी थी। जैसे मेरे 80% से नीचे कभी मार्क्स नहीं आए। हमारे बचपन के बारे में बहुत सी बातें हैं जो और बच्चों से बहुत डिफरेंट हैं। ऐसे जैसे मेरे पापा हमेशा से लोगों के लिए लड़ते रहे हैं। शुरू से उन्हें लगभग 32 से 33 साल हो गए गरीबों और किसानों की सेवा करते हुए। वो उनके हकों के लिए लड़ते हैं और वो 8 से 10 बार जेल भी जा चुके हैं और उन पर कई चार्जेस भी हैं। तो हम शुरू से उनके साथ रहते हैं और वो हमें जैसे कोई वो प्रोटेस्ट होता है तो हमें साथ में लेकर जाते हैं। कोई महासम्मेलन होता है तो वहां पर भी हमें लेके जाते हैं। तो हमें वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, कैसे दूसरों के साथ बातचीत करनी है और किसको कैसे जवाब देना है और सही को सही और गलत को गलत कहना है।
दूसरे बच्चों की तुलना में आपका बचपन कैसा है?
मुझे लगता है उनकी तुलना में हमारा बचपन यूनिक था। वो सभी वहीं करते थे, खेलना कूदना या घर पर रहना, है ना, रिश्तेदारी में जाना। हम छुट्टियों में हम कभी भी रिलेटिव्स के घर नहीं गए। हम हमारे पापा के साथ रहते और अलग अलग जगह घूम के आते जहाँ भी उनका आंदोलन होता है ना। तो उससे हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिली कि कैसे हमें अपनी जिंदगी को डेवलप करना है और कैसे हमें रहना है और लोगों से बातचीत कैसे करनी है और उनके दुख को कैसे समझना है।
ये वीडियो रोहित कुमार ने रिकॉर्ड किया है। रोहित एक फ्रीलांस टीचर हैं जो स्कूली बच्चों को जीवन कौशल की ट्रेनिंग देते हैं। फ्रीलांसर फोटोग्राफर सर्वेश की तरह रोहित भी कई दिनों तक आंदोलन में जाते रहे और वीडियो बनाते रहे, लोगों से बातें करते रहे। रोहित ने वायर के लिए किसान आंदोलन पर कई सारे लेख भी लिखे। रोहित अपने माँ के निधन के बाद गम में डूबे थे, तभी किसान आंदोलन शुरू हो गया। रोहित को लगा कि मीडिया किसानों को इतनी गालियां दे रहा है, मतलब किसान कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। गाजीपुर का रास्ता बंद था लेकिन टैक्सी वाले ने कह दिया, चिंता मत कीजिए, मैं भी किसान का बेटा हूं, और उसने किसी तरह रोहित को गाजीपुर बॉर्डर के करीब पहुंचा दिया। पैदल चलकर जब रोहित आंदोलन स्थल पर पहुंचे तब तक काफी थक चुके थे। वहां उनकी पहली मुलाकात मंजीत बाबा से हुई और इस शख्स ने पहला सवाल ही यही किया, कुछ खाओगे? ये नहीं पूछा तुम कौन हो। यह बात रोहित के दिल में ठहर गई और रोहित के भीतर किसान आंदोलन ठहर गया। रोहित ने चुपचाप आंदोलन को रिकॉर्ड करना शुरू किया और इंडिया स्पीक्स नाम से यूट्यूब चैनल बना लिया। इस चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, फिर भी रोहित अपनी निष्ठा से काम करते रहे, अपने लिए किसान आंदोलन को देखते रहे।
प्यार, अहिंसा, साहस, ये चीजें समाज में देखने के लिए दिल तरसता है और यही चीजें हमने दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के बीच देखी। टिकरी बॉर्डर पर बहुत सारे गरीब किसान थे और उनके पैरों पर जुराबे नहीं थी। सर्दी का वक्त था तो हमने सोचा क्यों ना उनके लिए ऊन की जुराबे ले जाएं। लेकिन जब हमने उनको ये जुराबें दी तो उन्होंने मना किया और कहा हम यहाँ भीख लेने नहीं आए हैं। फिर हमको कहना पड़ा नहीं नहीं ये स्कूल के बच्चों ने आपके लिए दिया है। फिर कहीं जाके उन्होंने ये जुराबें ली, बल्कि एक ने तो अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और कहा अगर तुमको कुछ चाहिए हम तुमको दे सकते हैं। टिकरी बॉर्डर पर एक रात बिताई, लेकिन वहां सोना असंभव था क्योंकि हर 15 सेकेंड सड़क पे एक ट्रक गुजरता और वो पॉटहोल के ऊपर जब जाता तो धमाके जैसी आवाज आती। अरे हम वहां एक रात मुश्किल से बिता सकते हैं, ये लोग वहां पूरा साल रह चुके हैं।
टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का मोर्चा बंधा था। एक साल में आंदोलन का घर और दफ्तर पक्का होने लगा। जब बस रहा था तब लोगों ने वीडियो कम बनाए कि कैसे बस रहा है, लेकिन जब उजड़ा तो लोग खुद ही लाइव करने लगे, वीडियो बनाने लगे। फेसबुक और ट्विटर की दुनिया के मास्टर हो चुके थे। ये वीडियो देखिए। आंदोलन केवल शाहजहांपुर, पलवल बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर नहीं था, अनेक जगहों पर था। कई टोल नाकों पर किसान आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग का यह टोल प्लाजा 350 दिनों के बाद चालू हुआ है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा बंद रहने से सरकार को 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसका लाभ मिडिल क्लास को भी मिला, उन्हें कई दिनों तक टोल टैक्स नहीं देना पड़ा। यहाँ से हर दिन 30 से 35 हजार छोटे बड़े वाहन और 8 से 10 हजार बड़े और भारी वाहन गुजरते हैं। अब सभी को टोल देना पड़ेगा। इस आंदोलन के बुजुर्ग इसकी जान थे। बुजुर्गों ने इस आंदोलन को अपने अनुभवों का संरक्षण दिया।
99 साल के हैं, हमने 99 साल का बुजुर्ग कभी अपने जीवन में नहीं देखा, तो मैं आपका पौरे।
गाजीपुर बॉर्डर पर मेरी मुलाकात राज सिंह से हुई। हमारे सहयोगी रवीश रंजन राज सिंह के कई किस्से सुनाया करते थे। इस 1 जनवरी को राज सिंह 100 साल के होने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे बोलिए इन्हें। मुरादनगर के जलालाबाद गांव के राज सिंह के एक इशारे पर 40-50 ट्रैक्टरों से भरे किसान गाजीपुर पहुंच गए थे। राज सिंह जहां बैठ जाते थे वहीं अड्डा बन जाता था। इस उम्र में राज सिंह ने मुझसे भी कहा सरकार कुछ करेगी तो मुझे बताना, मैं ट्रैक्टर लेकर आ जाऊंगा। लोकतंत्र के इस प्रहरी को मेरा सलाम, आपकी तरफ से प्रणाम।
3 काउन दिए इसने, भाई वापस ले लिया, हमें मिला क्या? ये जो हमारे 5 पंच चुनकर दिए जो निर्णय करेंगे ये करेंगे, हम तो उठ के जा रहे, फिर को कोई ऐसी बात होगी फिर दोबारा आ जाएंगे।
किसान आंदोलन कभी भी पूरा कवर नहीं हो सकता है। आंदोलन समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं हो पा रहा है। मुकेश सिंह सेंगर ने आज रिपोर्ट फाइल की है कि सिंघू बॉर्डर पर रास्ता इसलिए पूरी तरह नहीं खुल सका है क्योंकि सरकार ने किसानों को रोकने के लिए जो मोटी दीवारें खड़ी की थी, बैरिकेड बनाए थे, कंटेनर लगाए थे, उन सब को हटाने में, तोड़ने में वक्त लग रहा है। किसानों के साथ बहुत से किस्से चले जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर कचरे का पहाड़ है, उसकी बदबू के बीच किसान कैसे दिन और रात गुजारते होंगे। एक किसान ने कहा कि शुरू में बदबू बर्दाश्त नहीं हुई, बाद में आदत हो गई, अब घर लौटकर घर के सामने कचरे का पहाड़ बनाना पड़ेगा तभी नींद आएगी। ऐसी मुश्किल लड़ाई के बाद अगर इस देश का किसान अपनी गाड़ियों को फूलों से सजाकर वापस जा रहा है तो वह उसका हकदार है। उसने सरकार और गोदी मीडिया के बिछाए हर कांटे के बदले फूल ही तो उगाए, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की फसलें लगा दी जिसे हुकूमत काट नहीं पाई। इस आंदोलन में शामिल किसी भी किसान से टकरा जाइए, आपके सामने एक उपन्यास खुल जाएगा। ruralindiaonline.org नाम की एक शानदार वेबसाइट है, जाया कीजिए। इसका नाम परी भी है, यानी पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। मशहूर पत्रकार पी साईनाथ ने इसे एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया है। इस वेबसाइट पर 60 से अधिक लेख किसान आंदोलन पर हैं और बहुत सारी तस्वीरें हैं। लुधियाना के एक विकलांग शिक्षक प्रवीण कुमार ने सिंघू बॉर्डर पर 18 फीट लंबी पेंटिंग बना दी। प्रवीण कुमार ने सोचा कि ऐसा क्या करें कि वे भी इस आंदोलन का हिस्सा बन जाएं। उन्होंने ये शानदार पेंटिंग बनाई, किसान आंदोलन की स्मृतियों को आकार दे दिया। परी की वेबसाइट ऐसी अनगिनत कहानियों के साथ याद दिलाती रहेगी कि किसान भारत की जान हैं। इनसे कितने वादे किए गए, धोखा मिला, लेकिन किसानों ने खुद से एक वादा किया, पूरा किया, कानून वापस हो गया। भारत का किसान बहुत धार्मिक है, धर्म के बिना वो जी नहीं सकता, लेकिन किसान इस भारत को बता गए हैं कि भारत का एक और धर्म है, नागरिक।
कुछ गिले शिकवे थे वे दूर हुए, मांगे हमारी पूरी हुई, किसानों की जीत हुई। आओ मिल गले फिर मिले ना मिले, अब लौट चले।
प्रधानमंत्री को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने उन घरों को भी देखना चाहिए जिनके नाम पर कच्चे मकान बना दिए गए हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट तो देख ही सकते हैं।
मोदी के दाढ़ी में घर है जब दाढ़ी फटकार देते तो 50 लाख दाढ़ी फटकारे से 1 करोड़ भाई।
कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, ये मोदी जी की केंद्र में सरकार है और यहाँ मामा की सरकार है।
5,000 पहली किस्त 25 निकल रहते हैं, ले 5,000 उसने बनने के बाद, फिर दीवार खड़े करने के बाद एक किस्त फिर निकला हुआ ले 5,000 सरपंच।
बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी से घर निकालते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कोई गरीब घर से वंचित नहीं रहेगा, लेकिन छोटे लाल ने अपने कच्चे घर का रेट कार्ड सुना दिया। छत के नाम पर बल्लियों के सहारे खप्पर बिछाए गए हैं, कुछ मकानों में सीमेंट और कंक्रीट की जगह मिट्टी का उपयोग किया गया है। इस मकान में छत के नाम पर सिर्फ घास फूस और पत्ते हैं। डिंडोरी जिले के गौरा कन्हारी में पक्के मकान की योजना हकीकत में कच्चे में तब्दील हो गई, छत भी कच्चा, फर्श भी कच्चा, वो भी रिश्वत और मुर्गे वगैरह की भेंट के बाद।
मैं तो कहाँ पक्की बनवाऊँ, जब शासन दे रहे इतना पैसा मार ली थे ऐसे के मैं बोले तो ये मटेरियल नहीं आता, जैसे न बना फिर बना नहीं बना दूसरा देगा।
पक्का तो बना रही, बाकी रेत नहीं मिल रहा है अपन को, फिर पैसा नहीं मिली इसलिए नहीं बना पाए, खबर डाल दी।
तो इसमें जियो टैग वगैरह कैसे किए होंगे?
जियो दूसरे आवास से कर देंगे।
हितग्राही बता रहे हैं कैसे जियो टैगिंग दूसरे आवास से कर दी गई, लेकिन तहसीलदार साहब ने किताबों में जांच की बात पढ़ी है सो कैमरे के सामने वही घिसा पिटा बयान दे दिया।
कच्चे मकान का तो कोई प्रावधान नहीं, प्रधानमंत्री आवास में पक्की छत होना चाहिए, पक्का घर होना चाहिए। उसमें ये जरूर है कि अगर उसने खपरेल लगाया या जो कबीलू का जो प्रावधान किया है गाइडलाइन में तो उसके अनुसार होना चाहिए, लेकिन फिर भी दीवार पक्की होनी चाहिए।
सरपंच सर उन्होंने रोजगार सहायक और सचिव ने पैसा भी लिया है बैगा हितग्राहियों से,
ये जांच का विषय है, इसकी जांच कराई जाएगी, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है।
मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत कुल लक्ष्य 32,27,131 घरों का है, स्वीकृति मिली है 26,26,943 यानी 81.4% की। अभी तक निर्माण हुआ है 19,37,812 यानी 60.05% घरों का। वहीं प्रधानमंत्री आवास शहरी में कुल स्वीकृति है 8,53,075 घरों की, निर्माण हुआ है 4,51,334 यानी 52.9% घरों का। यही नहीं, 4 लाख मकानों के लिए राज्य सरकार ने अभी अपना अंशदान भी नहीं दिया है, इस वजह से केंद्र ने 640 करोड़ रुपए की राशि भी रोक ली है।
शहर में आप नाक भौं सिकोड़ते होंगे कि गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य टाइप सारी चीजें फ्री 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 तो हैं, फिर ये रोते क्यों हैं? लेकिन दरअसल छले ये जा रहे हैं, अछूते आप भी नहीं हैं, क्योंकि आपके टैक्स के पक्के पैसों से ही ये कच्चा और घटिया निर्माण हो रहा है। नेताजी तो बस माला पहनकर आगे बढ़ जाते हैं। डिंडोरी से डेविड और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।